आज है 7 अगस्त दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। पाकिस्तान ने भारत से कूटनीतिक संबंधों का स्तर घटाया, व्यापारिक संबंध भी मुअत्तल। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार, समर्थक ही नहीं विरोधियों ने भी भावभीनी श्रद्धांजलि दी।
प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था।
कश्मीर में कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। विशेष दर्जा छीने जाने से लोगों में गम और गुस्सा।
मतलब ये एक किस्म का एक लावा समझिए, ये फटने वाला है। ये कैसा फटेगा ये इंडिया को नहीं पता।
ये सब कुछ होगा कार्यक्रम में, लेकिन सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके बाद इस बैठक में जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने और राज्य के पुनर्गठन पर भारत सरकार के फैसले पर बात हुई। इसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों का स्तर कम करने और व्यापारिक रिश्तों को फिलहाल रोकने की घोषणा की है। साथ ही कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की बात भी पाकिस्तान ने की है। इधर भारत प्रशासित कश्मीर के कई इलाकों में आज विरोध प्रदर्शनों की खबरें मिल रही हैं। कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं हुई हैं और भारत विरोधी नारे लगाए गए हैं। जम्मू और कश्मीर में अब भी सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है और कर्फ्यू लगा हुआ है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित विद्युत शवदाह गृह में राजकीय सम्मान के साथ कर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम बड़े नेता वहां मौजूद रहे। अंतिम संस्कार सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने किया। मंगलवार रात सुषमा स्वराज को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि राजधानी काबुल में पुलिस स्टेशन के बाहर एक बम धमाका हुआ है, जिसमें कम से कम 18 लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। गृह मंत्रालय का कहना है कि मारे जाने वालों में 14 आम नागरिक हैं। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। धमाके के वक्त नजदीक की एक कार में अब्बास कमियार मौजूद थे। उनका कहना है मैं धमाके की जगह के पास ही था, मुझे एक तेज आवाज सुनाई दी। ये बम धमाके की आवाज थी, मेरी पूरी कार कांप रही थी। उसके ठीक बाद मैंने देखा कि नजदीक की दुकानों के शीशे टूटकर बिखरने लगे थे। धमाके के प्रत्यक्षदर्शी अब्बास कमियार। इधर अमेरिका और तालिबान दोनों का ही दावा है कि अफगान संकट को सुलझाने के लिए चल रही बातचीत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों की मौत के संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से चर्चा की है। मंगलवार को पूर्वी यूक्रेन में रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों ने एक ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें यूक्रेन के 4 सैनिकों की मौत हुई थी। जेलेंस्की का कहना है कि उन्होंने पुतिन से गुजारिश की है कि वो अलगाववादी नेताओं से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला न करने के लिए कहें।
Я сьогодні зранку тільки що розмовляв з президентом Росії Володимиром Путіним з цього приводу. Терміново йому
потрібно. Мене аж завіре русі राष्ट्रपति Владимир Путін से फोन पर बात की। मैंने घटना के तुरंत बाद उन्हें फोन किया। मैंने उन्हें कहा कि इस तरह की घटनाएं हमें शांति की राह से भटका देंगी। मैंने उनसे गुजारिश की है कि वो दूसरों पर दबाव बनाएं ताकि हमारे लोगों को और न मारा जाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमीर ज़ेलेंस्की के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रितानी रेल कंपनियों ने कहा है कि आगामी जनवरी से ब्रिटेन आने वाले पर्यटक यहां की ट्रेनों में यूरोपीय रेलवे पास का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। पूरे यूरोप में एक पास पर यात्रा करने की सुविधा वाली इंटररेल योजना में ब्रिटेन की सदस्यता को खत्म किए जाने की घोषणा रेल डिलीवरी ग्रुप ने की है। हालांकि उनका कहना है कि इस फैसले का ब्रेक्सिट से कोई नाता नहीं है। ब्रिटेन की ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक पर्यटकों को अब अलग से ब्रिट रेल पास लेना होगा। बीबीसी को मिली जानकारी के अनुसार ब्रितानी नागरिक अब भी करीब 30 यूरोपीय देशों की यात्रा के लिए इंटररेल पास खरीद सकते हैं। बीबीसी समाचार।
ये बीबीसी हिंदी सेवा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। भारत की पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्हें देश विदेश के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। उस खबर पर आने से पहले पाकिस्तान से बड़ी खबर आई है। पाकिस्तान ने भारत से अपने कूटनीतिक संबंधों का स्तर घटाने और व्यापारिक संबंधों को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। साथ ही जम्मू कश्मीर के मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ले जाने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से ही पाकिस्तान में बेचैनी है। आज पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक बुलाई, जिसमें तमाम वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा फौज और सुरक्षा बलों के आला अफसरों ने शिरकत की। आइए सीधे चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से बीबीसी उर्दू संवाददाता शहजाद मलिक और जानकारी देने के लिए फोन के जरिए हमारे संपर्क में है। शहजाद, आप मेरी बात सुन रहे हैं?
जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे राजेश।
तो सबसे पहले ये बताइए कि इस जो बैठक हुई थी उसमें क्या फैसले किए गए अहम?
जी राजेश, ये बैठक जो है ये तीन दिन 5 अगस्त से लेके आज तक, ये 3 दिनों में 2 अहम बैठकें इनकी हो चुकी हैं प्रधानमंत्री इमरान खान की। उन्होंने इसको चेयर किया है और सबसे चीफ जो है पाकिस्तान की अफवाज के वो सारे इसमें शरीक थे। उसमें जो फैसला जो ये हुआ है वो ये तो ये है कि पाकिस्तान के और इंडिया के दरमियान जो तजारती ताल्लुकात है, बिजनेस ट्रेड जो है, वो सारे कनेक्शन खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो यूनाइटेड इस मामले को यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें लेके जाया जाएगा कश्मीर के मामले को। और जो अहम मामला है वो ये है कि फौज को अलर्ट कर दिया गया है और उसको कहा है कि किसी भी सूरत हाल से मेरे अलर्ट रहे, और 15 अगस्त जो कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है उसको पाकिस्तान में पहली दफा उसको एक ब्लैक डे के तौर पर मनाया जाएगा। जी
तो ये जो फैसला हुआ है, इसके बाद वहाँ कुछ और हलचल है? इसको वहाँ का मीडिया किस तरह से ले रहा है, या आम तौर पर किस तरह का वहाँ पे मंजर दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अहम महत्वपूर्ण फैसला है?
जी बिल्कुल राजेश, पाकिस्तानी मीडिया जो है वो तो अभी तक तो, क्योंकि इजलास अभी खत्म हुआ है, मीटिंग अभी खत्म हुई है, तो अभी तक तो इस पे खास रद्दमल नहीं आया। लेकिन पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है वो अभी चल रहा है, जिसमें जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने, उनके एक वजीर हैं फवाद चौधरी, उन्होंने जो आज पार्लियामेंट हाउस में जो अपनी स्पीच में ये कहा है कि पाकिस्तान को इंडिया से अपना हाई कमिश्नर जो है फौरी तौर पर वापस बुला लेना चाहिए और इंडिया के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका ये कहना है कि बजाय इसके कि इतनी आगे जाया जाए, बेहतर ये है कि डिप्लोमेटिकली जो है वो इस मामले को हल किया जाए और जो दुनिया के दीगर ममालिक हैं, दोस्त ममालिक हैं, उनके साथ जो है सफारती सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर ये मामला जो है उठाया जाए, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशंस में भी इस मामले को लेके जाया जाए। तो अभी तक ये
सवाल यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में इस मामले को वो ले जाएंगे, साथ ही 14 अगस्त को कश्मीरियों के साथ एक तरह से यकजहती जाहिर करने का फैसला किया है, 15 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये फैसला जो है वो जो इमरान खान की जो कमेटी बनी, जो इजलास हुआ उसमें हुआ है। लेकिन अभी पार्लियामेंट में इस बारे में अभी एक, चूंकि जॉइंट रेजोल्यूशन जो है वो अभी कुछ देर में आना चाहती है, फॉरेन मिनिस्टर जो है वो अभी पार्लियामेंट हाउस में इसमें अपनी तकरीर कर रहे हैं, तो उसमें देखना ये होगा कि क्या उसमें भी ये बात आई है या नहीं आई कि जो फैसले जो है वो वहां पर हुए हैं सिक्योरिटी कमेटी में। तो जब ये इजलास, इसके पे जो रेजोल्यूशन आएगा, और ये यही इम्कान यही है, उम्मीद यही है कि ये जॉइंट यूनानिमस इसको पास कर लिया जाएगा, लेकिन इसमें देखना ये होगा कि क्या ये जो पार्लियामेंट है जो फैसले वहां पर सिक्योरिटी कमेटी में हुए हैं क्या उसकी वो तौसीफ करेगी, उसको वो अडॉप्ट करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में जो है मामला जो है वो
जी
आधे घंटे तक जो है वो क्लियर हो जाएगा।
क्लियर हो जाएगा। हमारे साथ दूसरी टेलीफोन लाइन पे जी पार्थ सारथी हमारे संपर्क में हैं, जो पाकिस्तान में भारत के हाई कमीशन रह चुके हैं। पार्थ सारथी साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका और शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। ये जो फैसला पाकिस्तान ने किया है कि भारत के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को डाउनग्रेड कर रहे हैं, इन फैसलों का क्या अर्थ आप निकालते हैं?
देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। जब हमारे संसद पर हमला हुआ और ये पाया गया था उसमें जैश ए मोहम्मद शामिल था, तो हमने उच्चायुक्त को वापस बुला लिया, उन्होंने भी किया, लेकिन संपर्क रहता है, उप उच्चायुक्त वहाँ हैं और दूसरे भी माध्यम है संपर्क रखने के लिए अगर पाकिस्तान चाहता है।
लेकिन उसमें साथ में बायलेटरल ट्रेड जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको सस्पेंड करने की बात कही है, और रिव्यू ऑफ बायलेटरल अरेंजमेंट यानी दोनों मुमालिक दोनों देशों के बीच में जो जितने भी बायलेटरल अरेंजमेंट्स हैं उनकी भी समीक्षा करने का फैसला किया है, साथ में 15 अगस्त को ब्लैक डे के तौर पर मनाने का फैसला किया है।
ये देखिए ये सब ड्रामेबाजी है, वो कुछ कर नहीं पाए हैं, प्रतिबंध उन पर लगा हुआ है और वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के सामने फिर उन पर जो सैंक्शन लगाने हैं उस पर बातचीत होगी, इससे घबराए हुए हैं। अब उनकी अर्थव्यवस्था खराब है, दुनिया भर से भीख मांग रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या अरब अमीरेट्स हो या सऊदी अरेबिया, तो ये ऐसे कौन सी शक्तिशाली देश है जिससे हम घबराएं।
हाँ, लेकिन वो मामले को जब यूएन सुरक्षा परिषद में ले जाने की बात कर रहे हैं उसका उसको कितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए?
पिछले 30 साल से कह रहे हैं कोशिश करें,
यानी आप इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं?
नहीं, मैं गंभीरता देखिए ये हमने इनके साथ और कोई विकल्प तो है नहीं, खासतौर पर उनकी अर्थव्यवस्था इतना बिगड़ी हुई।
लेकिन कल तो बहुत कड़ा बयान इमरान खान ने दिया था वहां के जो प्रधानमंत्री हैं।
भाई वो मेरे लिए, मैं इमरान खान को 1982 से जानता हूँ जब वो क्रिकेट कैप्टन थे और मैं कराची में था, तो ये उनका कहना कोई अद्भुत चीज मैं नहीं समझता। उनके पार्टी का किसने स्थापित किया? उन्होंने नहीं, लेकिन जनरल हमीद गुल जो ISI के पूर्व अध्यक्ष थे उन्होंने शुरू किया पार्टी को। तो देखिए इमरान खान को मैं सेना का एक सहायक समझता हूँ, जो भी जनरल बाजवा कहें वो करेंगे। अब जनरल बाजवा साहब समझ गए हैं कि बल प्रयोग से कुछ फायदा नहीं निकलता
जी,
और आतंकवाद से कुछ फायदा ही मिला नहीं, और हमने सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया जम्मू कश्मीर में, करते रहे जो।
बहुत बहुत शुक्रिया।
जी। मैं घबराता नहीं पाकिस्तानियों की हाल में पिछले 30 साल से देखता आ रहा हूँ
जी,
ये एक और घटना है।
बहुत बहुत शुक्रिया जी पार्थसारथी साहब, भारत के उच्चायुक्त रहे पाकिस्तान में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब चर्चा जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले 2 दिनों से सड़कें सुनसान हैं, राजनीतिक नेता हिरासत में हैं और विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए शहरों की सड़कों पर कांटेदार तार लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर हथियारबंद पुलिस और अर्धसैनिक बलों के सिपाही तैनात हैं। राज्य में आज पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच छिटपुट झड़पों की खबरें भी हैं। BBC संवाददाता आमिर पीरजादा ने कुछ जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच होने वाली इन झड़पों को अपनी आंखों से देखा।
अभी हम स्टोन एज में पहुंच गए हैं, कोई राबता नहीं है बाहर के मुल्कों के साथ या कुछ भी नहीं है। हम अगर कोई पराया मोहल्ला भी होगा वहाँ के हालात भी मालूम नहीं है। बहुत ही खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो गए उसके, जो कि अभी हमें नज़र में ही है, जो अभी फलस्तीन में हो रहा है कि इजरायली सेटलमेंट्स आ रहे हैं, वैसा ही इनकी पॉलिसी वही है।
जब इन्होंने बोला कि यहाँ पे यात्रियों पे हमला होने वाला है, यहाँ के जो टूरिज्म सेक्टर है उन पे हमला होने वाला है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, दिस वॉज ऑल प्री प्लानड। उनको 370 हटाना था, 35A हटाना था, ये जो सारा है ये इन्होंने अपना एक अंधा कानून चला दिया है कश्मीरी लोगों को। इनको कश्मीर नहीं चाहिए, इनको खाली कश्मीर का जमीन चाहिए, चाहे कश्मीर का बंदा मर जाए भूखा रहे, उनके साथ इनका कोई ये नहीं है।
They have no relevance now. Even when they were supporting the government of India has deceived them and got everything done by these parties who are, whether it is National Conference, whether it was another party, whether it was PDP, they have all been the partners in the crime.
आप अगर मोदी जी को ये बोलना था तो उनको ये एक मतलब ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलानी थी, उनमें इसको डिस्कस करना था, तब जाके लोगों की एक वो राय लेनी थी कि हाँ जी क्या करना है क्या नहीं करना है। अमित शाह जी देखिए वो अपनी वो जो जब परसों वो पार्लियामेंट में आए बस अपनी स्पीच बोले जा रहे हैं, अपोजिशन का कुछ सुन ही नहीं रहे। ये एक गुंडा राज चल रहा है और कुछ नहीं है।
अभी देखिए यहाँ पे जो लोग है, मतलब ये एक किस्म का एक लावा समझिए, ये फटने वाला है। ये कैसा फटेगा ये इंडिया को नहीं पता।
कश्मीर में लावा फट सकता है, ये थे कुछ आम कश्मीरियों की आवाज़ें। भारत के दूसरे हिस्सों से रोजी रोटी कमाने के लिए कश्मीर घाटी गए लोगों पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद की मुलाकात कुछ ऐसे कामगारों से हुई जो घाटी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पुलिस लाउड स्पीकरों पर लगातार लोगों से अपने घरों में बंद रहने की हिदायत दे रही है।
कल से यानी सोमवार से, जब से भारत सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि आर्टिकल 370 के प्रावधान को वो हटाना चाहती है, तब से पूरी वैली में एक तरह से हड़ताल है, दुकानें बंद हैं और ट्रैफिक भी बिल्कुल सड़क पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नहीं है। और बहुत सारे लोग, सैकड़ों की संख्या में लोग जो यहाँ पर राज्य से बाहर जाना चाहते हैं, श्रीनगर से बाहर जाना चाहते हैं, वो यहाँ बस स्टेशन है यहाँ पर, वो एक जगह बैठे हैं गाड़ियों के इंतज़ार में हैं, गाड़ियाँ हैं नहीं। कई लोग जो यहाँ पर अपने परिवारों के साथ आए हुए हैं, बच्चे और महिलाओं के साथ आए हुए हैं, वो यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं।
रूम में आके बोलते हैं कि जाओ यहाँ से निकलो वरना बहुत कुछ हो जाएगा।
हम तकरीबन 3 महीने से।
तो अभी जा रहे हैं घर?
जी।
गाड़ी मिल रही?
जी, गाड़ी बोल रहा लोग 500 से।
मैं बिहार से आया हूँ। मैं
तो अभी यहाँ क्या करते थे?
मैं यहाँ पर पेंट के काम करता हूँ मैं।
अच्छा, तो अभी आपको गाड़ी मिली?
गाड़ी नहीं मिली अभी तक।
कल से ट्राई कर रहे हैं?
कल से ट्राई कर रहा है, लोग सब निकल रहे हैं, बोल रहे हैं स्कूल कॉलेज से भी निकल है, सरकार ने निकाला है और सब कोई जा रहा था, कल सब कोई निकल जा रहा है। यहाँ पर दफे टूटा है तो इसमें कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर
पूरे श्रीनगर में और उसके आसपास जब हम निकल रहे हैं सड़कों पे तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा है, सब सहमे हुए हैं ऐसा लगता है। कुछ एक दो लोगों से जब हमने बातें की तो उनका ये कहना था कि जो भी भारत सरकार ने ऐलान किया है उसके वो ख़िलाफ़ हैं, और उनका ये कहना था कि ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य की जो यहाँ पर आबादी है, ये भारत सरकार चाहती है कि वहाँ पर ये आबादी जो है उसका जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाए, तो वो होने नहीं देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, उनका ये कहना था। लेकिन यहाँ के बहुत सारे जो मेन स्ट्रीम लीडर्स हैं वो अभी नज़रबंद हैं अपने घरों में, तो वो ये कह रहे थे कि उनको इंतज़ार है कि जब लीडर्स उनको जो भी अहकामात दे, जो भी हुक्म दे, उसके बाद ही वो आगे का जो है कदम उठाएंगे। फिलहाल ज़्यादातर लोग अपने घरों में हैं, डरे हुए हैं, बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ज़बरदस्त इंतज़ाम है, पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा। चप्पे चप्पे में आप पूरे शहर में आप और पूरे वैली में आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स का की मौजूदगी यहाँ पर है, इसलिए लोग अपने घरों में ही रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। जुबैर अहमद, BBC श्रीनगर।
और ज़ुबैर अहमद श्रीनगर से सीधे हमसे इस वक्त संपर्क में हैं। ज़ुबैर, बहुत मुश्किल से आपसे संपर्क हुआ है, अब वहाँ से जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो बहुत कम आ पा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कश्मीर वैली में दूसरी जगहों पे क्या हो रहा है। आप वहाँ 2 या 3 दिन से हैं, अभी तक आपने क्या देखा, हमें सब कुछ बताइए।
देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो अभी इस प्रोग्राम में आपने आवाज़ें सुनी वो लोग थे जो हमसे किसी न किसी तरह से बात कर पाए। बहुत सारे, ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अभी बात नहीं कर पा रहे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये बताना मुश्किल है, वो बिल्कुल शॉक में है इस वक्त। जब से आर्टिकल 370 की खबर यहाँ पर आई है सोमवार से, ऐसा लगता है कि वो सत्ते में आ गए हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से उसकी प्रतिक्रिया उस पर दे। इनके लीडर सारे नजरबंद है और जो भी समाज को एक तरह से लीड कर सकता है वो लोग अभी अपने घरों में रह रहे हैं, आम जनता भी बाहर नहीं निकल रही है क्योंकि
यानी आप जुबैर
निकलेंगे।
हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ की मस्जिदों में क्या अजान हो रही है, वहाँ क्या नमाजें हो रही हैं, वहाँ क्या स्कूल तो बंद हैं लेकिन जो सेपरेटिस्ट लोग हैं वो कहीं कुछ बोल रहे हैं, या चारों तरफ एकदम खामोशी है?
चारों तरफ बिल्कुल खामोशी है, स्कूल कॉलेज वगैरह बंद है। मस्जिदों से अभी थोड़ी देर पहले हमने अजान की आवाज़ सुनी, मस्जिदें मेरे ख्याल से जो छोटी छोटी मस्जिदें वहाँ पे नमाजें भी हो रही हैं जो मोहल्लों में मस्जिदें होती हैं, लेकिन जामा मस्जिद में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो जुमे का परसों जो जुमे का दिन है, अभी हमें ये खबरें आ रही है कि वहाँ नमाज की अदायगी नहीं होने दी जाएगी। तो आम जो जिंदगी बिल्कुल ठप पड़ी हुई, लोग अपने घरों में है और जो बगल की मस्जिद है वहाँ जाके जरूर नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन वो बाहर अपने जरूरत के सामान खरीदने की अगर कोशिश करें, वो बाहर जाने की कोशिश करें, तो वो नहीं कर सकते क्योंकि सारी दुकानें बंद हैं, सारे जो शॉपिंग प्लाजा और मॉल सारे बंद हैं।
जी,
और
पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है, यह पूरा हिंदुस्तान जानना चाह रहा है कि कश्मीर में हालात क्या हैं। आपने ये बताया कि वहाँ क्या हालात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास इस वक्त कम है, लेकिन दूसरे प्रोग्राम्स में आपसे ज़ुबैर अहमद हम ज़रूर बात करेंगे। दिन भर कार्यक्रम आप बीबीसी हिंदी सेवा से सुन रहे हैं। दशकों तक भारतीय राजनीति में सक्रिय रहकर कुशल राजनेता, प्रभावी वक्ता और प्रखर प्रशासक के साथ साथ एक दयालु इंसान की विशिष्ट पहचान बनाने वाली सुषमा स्वराज का अंतिम संस्कार आज दिल्ली के एक विद्युत शवदाह गृह में कर दिया गया। भारत की विदेश मंत्री रह चुकी सुषमा स्वराज का कल रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। वो 67 वर्ष की थीं। उनके अंतिम संस्कार के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी सहित भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। हमारे सहयोगी इकबाल अहमद भी वहां मौजूद थे। मैंने उनसे सुषमा स्वराज के अंतिम संस्कार की घड़ियों के बारे में बात की।
जी राजेश, अभी अभी थोड़ी देर पहले सुषमा स्वराज का जो यहाँ विद्युत शवदाह गृह है उसमें अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में उनकी जो बेटी है बांसुरी और उनके पति स्वराज कौशल, ये आगे आगे थे। इन दोनों ने जो प्रक्रिया है अंत्येष्टि की वो पूरी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से लेकर जो तमाम पार्टियों के नेता थे वो यहाँ मौजूद थे। और अभी अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी यहाँ से निकले हैं, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारे नेता, बीजेपी के मंत्री, दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी अभी मेरे सामने खड़े हैं खट्टर साहब, उसके अलावा अशोक गहलोत जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, वो मेरे सामने अभी मुझे दिख रहे हैं। तो इस तरह के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद दिख रहे हैं। जेडीयू के नेता जो अजय आलोक उनके प्रवक्ता हैं, मुझे लग रहा है कि वो पटना से खास आए हैं। तो इस तरह से तमाम पार्टियों के नेता सुषमा स्वराज को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं। गुलाम नबी आजाद ने भी जैसे उनकी मृत्यु की खबर आई कल रात, उन्होंने कहा कि वो मुझे अपना भाई मानती थी और मैं उन्हें बहन कह के पुकारता था। तो इससे रिश्ते जो है, आपसी रिश्ते की राजनीतिक जो विरोध है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो संबंध है वो बहुत ही अच्छे थे तमाम पार्टियों के नेताओं से उनके, और इस बात का सबूत मुझे आज उनकी अंतिम संस्कार में देखने को मिल रहा है। इस वक्त
जो तस्वीरें दिख रही हैं उनमें सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी, जिनका आपने नाम लिया, उन्होंने अंतिम संस्कार किया, उस बारे में कुछ बता सकते हैं किस तरह से उनकी बेटी ने ये संस्कार पूरा किया?
तो उनकी बेटी बांसुरी जो खुद पेशे से एक वकील हैं, उन्होंने अंतिम संस्कार किया। उनके साथ उनके पिता यानी सुषमा स्वराज के जो पति हैं स्वराज कौशल, वो मौजूद थे। लेकिन उस वक्त जब वो अंतिम संस्कार कर रही थी, अंत्येष्टि सुषमा स्वराज की हो रही थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और भाजपा के सबसे बुजुर्ग, सबसे वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी वहां मौजूद थे, दूसरी पार्टी के नेता मौजूद थे वहां पर। और एक बात मैं आपको खासकर बताऊं, पता नहीं आपने वो टीवी पर जरूर देखा होगा, जब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई तो जब बाहर निकलने को उठे प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी और दूसरे नेता, तो जो लालकृष्ण आडवाणी हैं वो पैदल चल रहे थे अपनी गाड़ी की तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका एक हाथ पकड़े हुए थे और रक्षा मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह उनका दूसरा हाथ पकड़े हुए थे और उनके आगे अमित शाह थे।
ये जानकारी दे रहे थे इकबाल अहमद। चाहे विरोधी हों या समर्थक, सभी ने सुषमा स्वराज को अंतिम श्रद्धांजलि दी है। भारत और विदेशों में उन्हें एक कुशल राजनेता, प्रखर वक्ता की तरह याद किया गया है। चारों ओर से आ रहे शोक संदेशों और श्रद्धांजलियों पर सुनिए विनीत खरे की रिपोर्ट।
सुषमा स्वराज स्वभाव से बेहद मिलनसार थीं और हर पार्टी, समाज के हर तबके में उन्हें जानने वाले लोग थे। और आज जब सुषमा स्वराज नहीं हैं तो उनके प्रशंसक उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बेहद भावुक वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सुषमा स्वराज के निधन पर गहरा दुख जताया। भाजपा में सुषमा स्वराज के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले लालकृष्ण आडवाणी ने एक बयान में कहा, मैं अपनी सबसे करीबी सहयोगियों में से एक सुषमा स्वराज जी के निधन से बहुत दुखी हूँ। मुझे एक भी साल ऐसा याद नहीं जब मेरे जन्मदिन पर वो मेरा पसंदीदा चॉकलेट केक लेकर न आई हूँ। ये थे लालकृष्ण आडवाणी के शब्द। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर संदेश में लिखा, सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर स्तब्ध हूँ, वो एक अद्भुत नेता थी। सुषमा स्वराज के घर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन शामिल थे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वो सुषमा स्वराज को 90 के दशक से जानती हैं और वैचारिक मतभेदों के बावजूद उन्होंने संसद में उनके साथ काफी आत्मीय समय बिताया। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते वक्त भावुक हो गए। बहुजन समाजवादी पार्टी प्रमुख मायावती ने सुषमा स्वराज को याद करते हुए कहा,
कुशल पॉलिटिशियन थी और प्रशासक थी और अच्छी वक्ता थी और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही मिलनसार वाला था। तथ्यों के आधार पर मैंने पार्लियामेंट में देखा, तथ्यों के आधार पर वो अपनी बात को रखती थी।
कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद भी सुषमा स्वराज को कई दशकों से जानते थे।
मैं 1977-78 से उनको जानता था जब मैं यूथ कांग्रेस में था और वो पहली दफा मंत्री बनी थी हरियाणा की। तकरीबन 40-42 वर्षों से हम एक दूसरे को जानते थे और पहले दिन से लेकर आज तक हमने कभी भी एक दूसरे को नाम से नहीं पुकारा। मैं हमेशा कहता था कि बहन तुम कैसी हो, वो हमेशा पूछती थी भाई कैसे हो।
भाजपा नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा,
25-30 वर्षों का संबंध था, छोटे भाई के रूप में सिखाया, पार्टी में, संगठन में, संसद में, सरकार में।
रूसी विदेश मंत्रालय ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया है। ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने लिखा, उनके कार्यकाल में मेरी उनसे कई उपयोगी और फलदायी चर्चाएं हुई। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में लिखा, उन्होंने असीम गरिमा और शालीनता से भारत का प्रतिनिधित्व किया। विनीत खरे, बीबीसी दिल्ली।
सुषमा स्वराज की लोकप्रियता की एक वजह यह भी थी कि वो लोगों को निजी तौर पर याद रखती थीं और उनसे सीधा संपर्क बनाकर रखती थीं। अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके नवतेज सरना ने भी बीबीसी से बातचीत में एक ऐसे ही किस्से को याद किया।
मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बता सकता हूँ कि कई 15 साल पहले 2000 या 2001 में मैं काउंसलर प्रेस था वाशिंगटन डीसी में, तो उस टाइम सुषमा जी इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थी और वो आई थी उस टाइम वाशिंगटन डीसी, और जब वो आई तो उनका सूटकेस नहीं आया उनके साथ, तो हमने उनको होटल वगैरह में सेटल किया और उसके बाद मैंने थोड़ी कोशिश की एयरलाइंस के साथ और 10-12 घंटे बाद सूटकेस मिल गया और सूटकेस हमने उनको डिलीवर करा दिया। अब ये बड़ा साधारण सा मामला है, हम लोग तो सब भूल गए, समय बीत गया, लेकिन 15 साल बाद जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था, जब वो मंत्रालय में वापस आई तो मैंने उनको जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, तो उन्होंने एकदम से कहा कि हाँ बहुत दिन से हम मिले नहीं, लेकिन तुमने तो मेरा सूटकेस ढूंढा था वाशिंगटन। तो मैं तो एकदम सरप्राइज हो गया कि इतने बड़ी हस्ती, इतने सीनियर मिनिस्टर को एक छोटा सा ये इंसिडेंट याद है। तो ऐसे कई और इंसिडेंट्स थे, वो ध्यान रखती थी कि स्टाफ ने कुछ खाया है, सबको चाय मिली है कि नहीं, सबने आराम किया है, कोई थक गया है तो बैठ जाओ आराम कर लो। ये तो बड़ी जैसे एक तरह की उनका जैसे मेटर्नल एटीट्यूड था अपने स्टाफ को।
और उन्हीं सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर अब पंच तत्व में विलीन हो गया। ये किस्सा सुना रहे थे अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके नवतेज सरना। कार्यक्रम में अब खेल समाचारों का समय नहीं बचा है, इसलिए आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
बीबीसी समाचार। पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने कूटनीतिक रिश्ते कम करने और व्यापारिक रिश्ते निलंबित करने का फैसला किया है। साथ ही पाकिस्तान ने कहा है कि वो 15 अगस्त को काला दिवस मनाएगा। भारत की पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का आज अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। मंगलवार रात दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया था। अफगानिस्तान में अधिकारियों का कहना है कि काबुल में हुए एक बम धमाके में 14 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले अधिकारियों ने धमाके में 18 लोगों के मारे जाने की खबर दी थी। हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने ली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों की मौत के संबंध में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से चर्चा की है। तुर्की ने कहा है कि उत्तरी सीरिया में सेफ जोन यानी सुरक्षित इलाका बनाने के लिए वो अमेरिका के साथ मिलकर संयुक्त संचालन केंद्र बनाने के लिए राजी हो गया है। तुर्की के रक्षा मंत्री का कहना है कि वो विस्थापित सीरियाई नागरिकों को फिर से देश भेजने पर भी मदद करने के लिए सहमत है। बीबीसी समाचार।
फिलहाल दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो मैनेजर थे तिलक राज भाटिया। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।